ईश्वरीय आतिथ्य।
प्रिय श्रोताओं, रमजान का विशेष कार्यक्रम ईश्वरीय आतिथ्य लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है हमारा ये प्रयास भी आपको पसंद आएगा। स्वाति और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
रमजान की महीने ने अपनी अपार विभूतियों और असीम ईश्वरीय क्षमा व दया के साथ हमें अपना अतिथि बनाया है। इस पवित्र महीने की विभूतियों व विशेषताओं के बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व उनके परिजनों ने अनेक हदीसें बयान की हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम अपनी एक दुआ में रमज़ान के पवित्र महीने के गुणों के बारे में कहते हैं, प्रभुवर हमें इस महीने की विशेषताओं को समझने और इसका सत्कार करने का सामर्थ्य प्रदान कर।
रमज़ान के पवित्र महीने के गुणों और लाभों को समझने का अर्थ इस महीने की वास्तविकता को समझना है। जो भी इस महीने के गुणों को सही ढंग से समझ लेगा और इस महीने की महानता को पहचान जाएगा, निश्चित रूप से वो अपना समय इसमें निष्ठापूर्ण ढंग से उपासना में व्यतीत करेगा। रमज़ान के महीने की एक विशेषता इसका आध्यात्मिक स्थान और ईश्वर के निकट इसकी विशेष स्थिति है। अनन्य ईश्वर ने इस महीने को एक पवित्र शीतल व उबलते हुए पानी के सोते की तरह रखा है, ताकि उसके बंदे एक महीने के दौरान अपनी आत्मा को उसमें धोएं, अपने अस्तित्व से पापों को दूर करें और ईश्वरीय प्रकाश की ओर आगे बढ़ें। यह महीना पवित्र होने और आध्यात्मिक छलांग लगाने का है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने के महत्व को समझ जाता तो यही कामना करता कि पूरा साल ईश्वर के आतिथ्य का महीना रहे।
रमज़ान के पवित्र महीने की एक अन्य विशेषता इसमें कुरान मजीद व अन्य बड़ी आसमानी किताबों का भेजा जाना है। कुरान मजीद, तौरेत, इंजिल, जबूर और हज़रत इब्राहिम व हज़रत मूसा की किताबें इसी पवित्र महीने में भेजी गई हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पौत्र इमाम जाफ़र सादिक अलैहि सलाम कहते हैं, पूरा कुरान रमज़ान के महीने में शब कद्र में एक ही बार में पैगंबर इस्लाम पर नाजिल हुआ, अर्थात भेजा गया। फिर वह 20 साल में क्रमबद्ध ढंग से उन पर नाजिल हुआ। हज़रत इब्राहिम की किताब रमज़ान महीने की पहली रात में, तौरेत रमज़ान के छठे दिन, इंजिल रमज़ान के 13वें दिन और जबूर रमज़ान की 18वीं तारीख को नाजिल हुई है।
रमज़ान महीने की विशेषताएं और उसके गुण असीम हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पौत्र इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस है कि रमज़ान के महीने में की गई भलाइयां स्वीकृत होती हैं और बुराइयां क्षमा की जाती हैं। जिसने रमज़ान के महीने में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, वो उस व्यक्ति की तरह है जिसने अन्य महीनों में पूरे कुरान की तिलावत की हो। रमज़ान का महीना विभूति, दया, क्षमा, तौबा व ईश्वर की ओर लौटने का महीना है। अगर किसी को रमज़ान के महीने में क्षमा न किया गया तो फिर किस महीने में क्षमा किया जाएगा? ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो इस महीने में तुम्हारे रोज़ों को स्वीकार करे और इसे तुम्हारी आयु का अंतिम वर्ष करार न दे, तुम्हें उसके आज्ञा पालन का सामर्थ्य प्रदान करे और उसकी अवज्ञा से तुम्हें दूर रखे, कि निश्चित रूप से प्रार्थना के लिए ईश्वर से बेहतर कोई नहीं है।
रमज़ान महीने की एक अन्य अहम विशेषता यह है कि ईश्वर इस विभूतियों भरे महीने में ईमान वालों पर शैतानों को वर्चस्व को रोक देता है और उन्हें बेड़ियों में जकड़ देता है। यही कारण है कि इस महीने में मनुष्य की आत्मा अधिक शांत रहती है और वह इस स्वर्णिम अवसर को अपनी आत्मा के प्रशिक्षण और अध्यात्म तक पहुंच के लिए प्रयोग कर सकता है। दयावान ईश्वर ने आत्मिक व आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ईमान वालों की पहुंच के लिए रमज़ान के पवित्र महीने और रोज़ों में खास विशेषताएं रखी है। उसने न खाने न पीने जैसी विस्तीमितताओं के मुकाबले में अपने बंदों के लिए अत्यंत मूल्यवान पारितोषिक दृष्टिगत रखे हैं, जिन्हें बयान करना संभव नहीं है।
इस ईश्वरीय आतिथ्य में न केवल ये कि उपासनाओं का पुण्य कई गुना अधिक मिलता है, बल्कि इस महीने में ईमान वालों का सोना और सांस लेना भी उपासना है और ईश्वरीय गुणगान समझा जाता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि इस महीने में तुम्हारी सांसें ईश्वर का गुणगान और तुम्हारी नींद ईश्वर की उपासना है। ईश्वर की ये विशेष व बेजोड़ कृपा दृष्टि साल के किसी भी अन्य महीने या दिन में दिखाई नहीं देती।
इस पवित्र महीने में रोज़ा रखने का बहुत अधिक पुण्य और विभूतियाँ हैं। रोज़ा रखने से मनुष्य की आत्मा कोमल होती है, उसका संकल्प मजबूत होता है और उसकी आंतरिक इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। अगर इंसान अपनी वासना और आंतरिक इच्छाओं को नियंत्रित कर ले और उनकी लगाम अपने हाथ में ले ले, तो फिर वह आध्यात्मिक पहलू से अपना प्रशिक्षण कर सकता है और वांछित पवित्रता व परिपूर्णता तक पहुंच सकता है। अगर इंसान अपनी प्रगति की मार्ग की बाधाओं को एक एक करके हटाना और अपने आप को शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त नहीं रखना चाहता, तो रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखना उसके लिए सबसे अच्छा अवसर है। कुरान मजीद के सूरह बकरह की आयत क्रमांक 183 में कहा गया है, हे ईमान वालों, तुम पर रोज़े उसी तरह अनिवार्य किए गए हैं जिस प्रकार तुमसे पहले वालों पर अनिवार्य किए गए थे, कि शायद तुम में ईश्वर का भय पैदा हो जाए।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पौत्र इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रमज़ान के महीने में रोज़े की विभूतियों व विशेषताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, लोगों पर रोज़ा इसलिए अनिवार्य किया गया ताकि वे भूख और प्यास की पीड़ा और तकलीफ़ को समझ सकें और फिर प्रलय की भूख प्यास और अभाव की पीड़ाओं को समझ सकें, जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम रोज़े में अपने भूख और प्यास के माध्यम से प्रलय में अपनी भूख और प्यास को याद करो। ये याद मनुष्य को प्रलय के लिए तैयारी करने पर प्रेरित करती है और वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अधिक कोशिश करता है। यही कारण है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने वालों को ये मूल्यवान शुभ सूचना दी है कि रमज़ान के पवित्र महीने का आरंभ दया है, उसका मध्यम भाग क्षमा है और उसका अंतिम भाग नरक की आग से मुक्ति है।
रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी से गुजरता है और हम उन राहगीरों की तरह हैं जिन्हें इस मार्ग पर बिना निश्चेतना के सबसे अच्छे कर्मों और सबसे अच्छे व्यवहार के साथ आगे बढ़ना है। चूंकि इस्लाम में मनुष्य का सबसे बड़ा दायित्व आत्मनिर्माण और अपने आप को बुराइयों से पवित्र करना है, इसलिए रमज़ान का महीना आत्मनिर्माण, नैतिकता व मानवता तक पहुँचने का सबसे अच्छा अवसर है। आत्मनिर्माण के लिए जिन बातों की सिफारिश की गई है उनमें से एक अहम बात अधिक बोलने से बचना है। मौन व कम बात करना ऐसा खजाना है जो मनुष्य के मन में ईश्वर की पहचान के दरवाजे खोल देता है। रमज़ान के महीने में जो ईश्वरीय आतिथ्य का महीना है, यह सिफारिश और बढ़ जाती है कि कहीं रोज़ेदार व्यक्ति दूसरों की बुराई करने, उन पर आरोप लगाने और झूठ बोलने जैसे पापों में ग्रस्त न हो जाए।
एक दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक महिला की आवाज़ सुनी जो अपनी दासी को गालियां दे रही थी। महिला ने सुन्नती रोज़ा भी रखा हुआ था। पैगंबर इस्लाम ने आदेश दिया कि कुछ भोजन लाया जाए। फिर आपने उस महिला से कहा कि इसे खा लो। اس نے کہا کہ ہے ایشور کے پیغمبر، میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو کس پرکار روزے سے ہے کہ اپنی داسی کو گالیاں دے رہی ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ روزہ کیول نہ کھانا اور نہ پینا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو واقعہ کہا وہ چنتن کا وشے ہے۔ انہوں نے کہا، روزے دار کتنے کم ہیں اور بھوکے کتنے زیادہ ہیں۔
دھن و ششٹاچار کے نیتاؤں نے کم بات کرنے اور مون کے بارے میں بہت سی سفارشیں کی ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا ہے، ہے میرے پتر، جب بھی تم یہ سوچو کہ بات کرنے کا مولیہ چاندی ہے تو یہ جان لو کہ چپ رہنے کا مولیہ سونا ہے۔ کم بولنے اور مون کے کچھ لابھ ہیں جن پر لوگ کم ہی دھیان دیتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اس بات کا اچھا افسر ہے کہ ہم ان پر وشیش دھیان دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتر امام رضا علیہ السلام نے کہا ہے کہ بدھی، گیان و ونمرتا کے چنہوں میں سے ایک مون ہے۔
نشچت روپ سے مون تتو درشتا کے دروازوں میں سے ایک ہے۔ مون پریم کا کارن بنتا ہے اور ہر اچھے کام کا مارگ درشک ہے۔ روزے دار ویکتی جس کی آتما ادھک شانت ہوتی ہے کم بات کرنے اور مون کا پریاس کر سکتا ہے، اور بات کرنے سے پہلے ادھک سوچ وچار کر سکتا ہے۔ سوچ وچار ایک بڑی اپاسنا ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک گھنٹے سوچ وچار کرنا 70 سال کی اپاسنا سے بہتر ہے۔